इस कहानी में सुनाए जाने वाले सभी पात्र स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। हमारा उद्देश्य किसी प्रथा, घटना या सामुदायिक कथाओं को बदनाम करना नहीं है। यदि कहानी की कोई वाक्य आपकी निजी जिंदगी से मेल खाती है तो ये सिर्फ एक सहयोग है। श्रोताओं को विवेक से फैसला लेने की सलाह दी जाती है।
श्रेयस गौतम की आवाज में आप सुनने जा रहे हैं चिन्मारा। कृपया ऐसी सैर पर निकलने से पहले यह निश्चित कर लीजिए कि आप ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं।
चिन्माड़ा जंगल का नाम अब दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में आने लगा है। कहते हैं यहां किसी हादसे के बाद से रात 1 बजे से 4 बजे तक अजीबोगरीब घटनाएं घटती ही रहती हैं। पिछले 23 सालों में चिन्माड़ा जंगल में किसी को जाने की अनुमति नहीं है। इसी जंगल के पास शीतल कॉटेज नाम का एक होटल है, जिसके रूम नंबर 306 में लोग आज भी जाने में डरते हैं, क्योंकि उसकी बालकनी चिन्माड़ा जंगल की ओर खुलती है। इन बातों से अनजान रवि और उसकी पत्नी मधुरिमा इस होटल में अपनी सर्दी की छुट्टियां बिताने आ रहे हैं। एक भयानक एक्सीडेंट के बाद से मधुरिमा बहुत सहमी सहमी रहती है। इसी वजह से रवि ने उसे शहर की भीड़भाड़ से दूर इस होटल में लाने के बारे में सोचा। जब ये दोनों होटल के अंदर आए तो एक अजीब सा सन्नाटा महसूस होने लगा। रवि ने रिसेप्शन पर जाके अवेलेबल रूम्स की जांच पड़ताल की तो सिर्फ एक ही रूम अवेलेबल मिला, रूम नंबर 306। सफर लंबा था और मधुरिमा भी बहुत थक चुकी थी, तो रवि ने ज्यादा पूछताछ नहीं की और चाबी लेकर रूम की तरफ जाने लगा। मधुरिमा और रवि जब दूसरी मंजिल पर पहुंचे तब मधुरिमा को याद आया कि उसका पर्स तो रिसेप्शन काउंटर पर ही रह गया है। रवि ने मधुरिमा को चाबी दी और खुद रिसेप्शन काउंटर पर पर्स लेने चला गया। मधुरिमा जैसे तैसे रूम नंबर 306 तक पहुंची। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। जब मधुरिमा को लगा कि रवि को आने में बहुत देर लग रही है तो वो खुद नीचे रवि के पास जाने लगी कि तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। आश्चर्यजनक रूप से बात यह थी कि चाबी तो मधुरिमा के हाथ में थी, फिर दरवाजा खुला कैसे? मधुरिमा इन सवालों का जवाब ढूंढे इतनी हिम्मत उसमें नहीं बची थी। रूम की रौनक देख उसकी आंखें कुछ मिनटों के लिए खुली की खुली रह गई, लेकिन उसकी बेचैनी कम ही नहीं हो रही थी। बालकनी का दरवाजा कांच का बना था। मधुरिमा ने जैसे ही वो दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पीछे से एक आवाज आई,
दरवाजा मत खोलो मैडम, और जितनी जल्दी हो आप यहां से चली जाइए।
मधुरिमा ने पीछे मुड़कर देखा तो वो उस होटल का वेटर था, कुछ बैग्स लेकर आया था। मधुरिमा ने उसकी बात अनसुनी कर दरवाजा खोलने की जैसे ही कोशिश की उसने बालकनी में कुछ ऐसा देखा कि उसकी चीख निकल गई। आवाज सुनकर रवि और मैनेजर तुरंत मधुरिमा की ओर भागे। रूम में आने पर उन्होंने देखा कि मधुरिमा बेहोश पड़ी है। होश में आने पर मधुरिमा ने बताया कि जब वो बालकनी का दरवाजा खोल रही थी तब जिस वेटर ने उसे दरवाजा न खोलने की चेतावनी दी थी वही वेटर खून से लथपथ बालकनी से उसकी ओर उसे मारने के लिए बढ़ रहा था। रवि के बहुत समझाने पर वो मानी कि ये सब बस थकान और सफर के कारण हुआ एक भ्रम था। 7 दिनों तक मधुरिमा और रवि चिनमाड़ा जंगल के बारे में बहुत कुछ जानते रहे और कई जगह घूमना फिरना भी हुआ, लेकिन मधुरिमा ने वापस बालकनी का दरवाजा न खुद खोला और न रवि को खोलने दिया। लेकिन 8वें दिन की रात मधुरिमा और रवि गहरी नींद में थे कि रात 2:30 बजे मधुरिमा की नींद खुली। उसके कानों में कई चीखें एक साथ गूंज रही थी। मधुरिमा ने बालकनी की ओर देखा। उसे एहसास हुआ कि आवाजें बालकनी से आ रही हैं। जैसे जैसे मधुरिमा बालकनी की ओर बढ़ रही थी, आवाजें बढ़ती जा रही थी। उसने जब दरवाजा खोला तब उसने देखा कि जिस वेटर को उसने 8 दिन पहले देखा था वही आज उस बालकनी पर खड़ा होकर उसे देखे जा रहा था। मधुरिमा ने जैसे ही बालकनी में अपना पैर रखा, वेटर ने बालकनी से कूद कर अपनी जान दे दी। ये देख मधुरिमा की चीख निकल गई, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि बालकनी से वेटर की लाश सिर्फ और सिर्फ मधुरिमा को ही दिखाई दे रही थी। रवि ने जैसे तैसे उसे संभाला और कई बार समझाने के बावजूद वो नहीं मानी कि बालकनी के नीचे कोई लाश नहीं है। तो रवि तुरंत अगले दिन चेकआउट कर उसे घर ले गया और अपनी माँ से सारी बातें बताई। कुछ दिनों के बाद घर के नौकर और रवि की माँ मधुरिमा के खौफ से घर में रहने से तक इनकार कर रहे थे।
चिनमाड़ा के अगले अध्याय में सुनिए।
भाई छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। हे क्या डरता है तू? इन लोगों से डरेगा? निकाल यहाँ से।
भैया 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 भैया, इसकी कोई गलती नहीं है भैया, भैया छोड़ दो इसे प्लीज।
भैया मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा था, मैं तो खेलने आया था ना भैया। भैया
मेरा अंग जल रहा है, मुझे निकालो, मुझे निकालो यहाँ से बाहर, मेरा अंग जल रहा है।
इसी प्रकार की लगभग 8 से 9 तरह की आवाजों में मधुरिमा बात करते जा रही थी। बात किस संदर्भ में थी, किस बारे में थी, कोई कुछ नहीं जानता था। रवि हैरान था, उसकी माँ बेहोश हो रही थी कि आखिर मधुरिमा को ऐसा हुआ क्या है। लेकिन सच कहूं तो मधुरिमा में उस वक्त इतनी ताकत थी कि वो घर के सभी लोगों की जान उसी वक्त ले सकती थी।